संयुक्त राष्ट्र समाचार के साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ मैं सचिन गौड़, नमस्कार। 1 जुलाई 2022 के इस बुलेटिन की सुर्खियां। महासागरों की रक्षा के लिए महत्वाकांक्षी कार्रवाई और वैश्विक संकल्पों की पुकार के साथ लिस्बन में यूएन महासागर सम्मेलन का समापन। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 4 महीने बाद भी संकटपूर्ण हालात में तेजी से बढ़ रही हैं मानवीय राहत जरूरतें। अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की स्थिति पर गहरी चिंता, हालात ना बदले तो भविष्य और अंधकारमय होने की आशंका। और जिंदगियों की रक्षा और टिकाऊ विकास के लिए सड़क यातायात सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने पर बल। आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। पुर्तगाल के लिस्बन शहर में 1 सप्ताह तक चली चर्चाओं और कार्यक्रमों के बाद संयुक्त राष्ट्र का दूसरा महासागर सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस अवसर पर सरकारों और राष्ट्राध्यक्षों ने महासागरों की रक्षा के लिए एक नए राजनीतिक घोषणा पत्र पर सहमति जताई है। विश्व नेताओं ने इस घोषणा पत्र में अतीत की सामूहिक विफलताओं को पहचाना है, महासागरों के समक्ष मौजूद वैश्विक आपात हालात पर गहरी चिंता जताई है और मौजूदा संकट से निपटने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई की पुकार लगाई है। तटीय इलाकों में क्षरण, बढ़ता समुद्री जल स्तर, गर्म और अम्लीय होता समुद्री जल, समुद्री प्रदूषण, मछली भंडार का अत्यधिक दोहन और समुद्री जैव विविधता में कमी, ये कुछ ऐसी विशाल चुनौतियां हैं जिनसे महासागर जूझ रहे हैं। घोषणा पत्र में महासागरों और उसके पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य, उनकी उत्पादकता, उनके टिकाऊ इस्तेमाल और सहन क्षमता में तत्काल बेहतरी लाए जाने के उपायों पर बल दिया गया है। लिस्बन में जुटे शीर्ष नेताओं ने इस दिशा में विज्ञान आधारित और नवाचारी कार्रवाई पर जोर दिया है, जिसे साकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अहम होगा। सम्मेलन के दौरान 100 से अधिक सदस्य देशों ने वैश्विक महासागर के कम से कम 30% हिस्से के संरक्षण और रक्षा के लिए स्वैच्छिक रूप से संकल्प लिए। अन्य संकल्पों में वर्ष 2040 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने और महासागर अम्लीकरण से निपटने के उपायों पर शोध में निवेश किए जाने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत कर्मियों ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के आक्रमण के 4 महीने बाद भी विशाल पैमाने पर मानवीय राहत आवश्यकताएं और मानवाधिकारों के प्रति चिंताएं बरकरार हैं। और विवरण के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूक्रेन के लिए मानवीय राहत समन्वयक उस्नात लुब्रानी ने कीव से जानकारी देते हुए बताया कि मारियूपोल, खारकीव, कीव, बूचा, इरपिन और अन्य शहरों में हुए विध्वंस व उपजी पीड़ा को देखना हृदय विदारक है। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों व स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं, मगर उन्होंने ध्यान दिलाया कि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस और यूक्रेन को अतिरिक्त कोशिशें करनी होंगी। यूक्रेन में इस समय लगभग 1,60,00,000 लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जिसमें जल, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, सिर के ऊपर छत, संरक्षण की जरूरतें शामिल हैं। युद्ध से त्रस्त देश से परे वैश्विक खाद्य असुरक्षा के लिए चिंताएं गहरा रही हैं, जिसकी एक वजह है यूक्रेन में बंदरगाहों और वहां स्थित अनाज भंडारण केंद्रों तक सुरक्षित मार्ग से पहुंच न होना बताई गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने इन केंद्रों तक पहुंच संभव बनाए जाने की कई बार अपील की है। मानवीय राहत समन्वयक उस्नात लुब्रानी ने बताया कि अब तक 5,000 आम लोगों के मारे जाने और 5,000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है, मगर संगठन का मानना है कि वास्तविक संख्या हताहतों की मौजूदा संख्या से कहीं अधिक होने की आशंका है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय उच्चायुक्त मिशेल बाशिलेट ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर क्षोभ व्यक्त किया है और उनकी तत्काल सहायता के लिए दृढ़ कार्रवाई की पुकार लगाई है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि जल्द हालात नहीं बदले तो देश में महिलाओं का भविष्य और अधिक अंधकारमय हो जाने की आशंका है। पूरी जानकारी के साथ शिवानी काला।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय उच्चायुक्त मिशेल पैशलेट ने शुक्रवार को मानवाधिकार परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति पर आयोजित एक चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ ही दिन पहले आए भूकंप के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व एकजुटता व्यक्त करते हुए चिंता जताई कि इस आपदा से अफगान आबादी के लिए परिस्थितियां और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। मिशेल बैशलेट ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि तालिबान की सत्ता संभालने के बाद महिलाओं व लड़कियों के मानवाधिकारों को भीषण ठेस पहुंची है। अगर जल्द ही कुछ बदलाव ना हुआ तो उनका भविष्य और भी अंधकारमय होगा। महिलाओं की आवाजाही, पोशाक पर पाबंदी है जिससे उनके लिए बुनियादी सेवाओं की सुलभता प्रभावित हुई है और उनमें मानसिक अवसाद व बेचैनी बढ़ रही है। महिलाओं के स्वामित्व और उनके द्वारा संचालित व्यवसाय बंद हो रहे हैं, जबकि 12 लाख लड़कियां अब माध्यमिक शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। यूएन के शीर्ष अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अफगान महिलाओं को आगे रखकर सभी महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों की रक्षा व उन्हें बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनम गेब्रियसिस ने कहा है कि लगभग 110 देशों में कोविड 19 संक्रमण के मामले फिर से उभार पर हैं, जिनके लिए BA.4 और BA.5 वेरिएंट जिम्मेदार हैं। ये संक्रमण वृद्धि कुल मिलाकर 20% तक दर्ज की गई है। महबूब खान की रिपोर्ट।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनम गेब्रियसिस ने बुधवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में जोर देकर कहा कि कुल मिलाकर वैश्विक संख्या औसतन स्थिर है, मगर किसी को भी ऐसे किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना वायरस खत्म होने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा,
दिस पैंडेमिक इज चेंजिंग बट इट्स नॉट ओवर। वी हैव मेड प्रोग्रेस बट इट्स नॉट ओवर। Our ability to track the virus is under threat as reporting and genomic sequences are declining.
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि ये महामारी अपने रूप बदल रही है, मगर ये अभी खत्म नहीं हुई है। हमने भी प्रगति की है, मगर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वायरस पर नजर रखने की हमारी सामर्थ्य पर जोखिम मंडरा रहा है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कमी हो रही है। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर नजर रखना और भविष्य में उभरने वाले वेरिएंट्स का विश्लेषण करना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर टेड्रोस के शब्द। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के मध्य तक सभी देशों की कम से कम 70% आबादी का टीकाकरण करने के लक्ष्य की पूर्ति संभव नजर नहीं आ रही है और निम्न आय वाले देशों में टीकाकरण की औसत दर 13% से भी कम है। वहीं दूसरी तरफ उजला पक्ष देखें तो पिछले 18 महीनों के दौरान दुनिया भर में 12 अरब से ज़्यादा वैक्सीन टीकों का वितरण हुआ है और दुनिया भर के 75% स्वास्थ्यकर्मी और 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण हो चुका है।
वैश्विक सड़क सुरक्षा में बेहतरी लाने के इरादे से इस सप्ताह यूएन महासभा में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क यातायात दुर्घटनाओं में कमी लाने, जिंदगियों की रक्षा करने और सड़क सुरक्षा के जरिए टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट के साथ शिवानी काला।
एक अनुमान के अनुसार सड़क यातायात दुर्घटनाओं में हर साल 13 लाख लोगों की मौत होती है। मोटर वाहन विकसित किए जाने के बाद से अब तक दुनिया भर में सड़कों पर 5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व भर में 5 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में होने वाली मौतों के लिए सड़क दुर्घटनाएं सबसे बड़ी वजहों में से है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया कि सड़क दुर्घटनाएं लचर बुनियादी ढांचे, अनियोजित शहरीकरण, पस्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देशों के भीतर व उनके बीच पसरी विषमताओं से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित सड़कें विकास मार्ग में भी एक बड़ी बाधा है। विकासशील देशों को हर साल इसकी वजह से अपने सकल घरेलू उत्पाद को 2 से 5% का नुकसान उठाना पड़ता है। गुरुवार को महासभा में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक राजनीतिक घोषणा पत्र पारित किया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों व घायलों में 50% की कमी लाने और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने की पुकार लगाई गई है। इन प्रयासों के केंद्र में सुरक्षा को रखा गया है। उदाहरण स्वरूप, तेज गति या शराब सेवन के बाद गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट या हेलमेट ना पहनना, असुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचा और असुरक्षित वाहन, पैदल चलने वालों के लिए लचर सुरक्षा और यातायात कानूनों को सही ढंग से लागू ना किया जाना, इन सभी समस्याओं से निपटा जाना होगा।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।